Market Mantra.
Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, आप दोनों को नमस्कार.
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभव.
थैंक यू अमित. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस सर्ज ओवर 2%. सेंसेक्स जंप्स 1961 पॉइंट्स. निफ्टी एंड्स अबव 23,900. Markets in Asia and Europe display mixed trend. And crude oil price slip. Brent crude trades at $73.73.
आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक का उछाल. सेंसेक्स में 1,961 अंक की बढ़त और निफ्टी 23,900 से ऊपर दर्ज. एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में मिला जुला रुझान. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट. ब्रेंट क्रूड $73.73 प्रति बैरल के आसपास दर्ज. घरेलू शेयर सूचकांकों में आज चौतरफा खरीदारी से 2% अधिक का उछाल दर्ज हुआ. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2.5% की बढ़त से 1,961 अंक उछलकर 79,117 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.4% की तेजी से 557 अंक बढ़कर 23,907 के स्तर पर बंद हुआ. बीएसई मिडकैप सूचकांक में 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.9% की बढ़त दर्ज हुई.
Domestic benchmark equity indices today soared over 2%, fueled by buying across sectors. The 30-share BSE Sensex surged 1,961 points, or 2.54%, to close at 79,117, while the NSE Nifty 50 jumped 557 points, or 2.39%, to settle at 23,907. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap index rose over 1.2% and the small-cap index gained 0.9%. In the Sensex index, all 30 companies logged gains. Among the top gainers, SBI Bank increased 4.5%, TCS rose over 4.1% and Titan gained 4.1%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors ended with gains. In the top gainers, Focused IT advanced over 3.2%, Tech and Information Technology gained over 3.1% each, and Reality added over 2.9%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,446 companies advanced, shares of 1,475 companies declined, while shares of 120 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 59 companies hit their 52-week high, while 97 hit their 52-week low.
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे की मजबूती से 84.45 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स 107.5 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. सिद्धार्थ, शायद काफी दिनों के बाद शेयर बाजार से अच्छी उत्साहजनक खबरें, क्या ये तात्कालिक असर है? क्योंकि काफी दिनों से गिरावट थी और कल भी बाजार में एक विशेष कंपनी को लेके काफी उथल पुथल मची रही, ये उसका रिपरकशन है या ये बाजार माना जाए कि अब चूंकि बाजार इतने लोअर लेवल पे आ गया था तो कहीं ना कहीं मूल्य आकर्षक स्थिति पे पहुंच गए थे?
नहीं, देखिए, जैसे आपने जो कारण बताए वो भी कारण है. जैसे मुझे लगता है जो दो बड़े कारण है, एक तो जो कल एग्जिट पोल्स आए महाराष्ट्र के, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके जो एग्जिट पोल्स हैं, और कल तो खैर तस्वीर और साफ हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है जो इमीडिएट दो बड़े कारण थे, एक तो महाराष्ट्र इलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि वापस जो एनडीए की सरकार वहां पे दोबारा काबिज होगी, तो ऐसा उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था. दूसरा मुझे लगता है जो बड़ा जो कारण आपने बोला कि मार्केट अब शायद इस लेवल तक आ गई है, तो शायद इसलिए लोगों ने आज खरीदारी की. मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी. हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ वैल्यू बाइंग, जो मतलब कुछ अच्छे स्टॉक्स में लोगों को अगर अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से भी आज जो है मार्केट में वो इफोरिया था, प्लस जो यूएस में जो नवंबर 16 नवंबर तक का जो डेटा आया है जॉबलेसनेस वाला, तो उसमें भी एक दिख रहा है कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटा है, तो वो शायद कहीं ना कहीं हमारी आईटी कंपनीज के लिए अच्छा होता है। अदानी के शेयर्स मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन शायद उसमें भी जो आपने बोला कि एक खास कंपनी जिसकी वजह से कल बाजार में एक भारी गिरावट थी, तो वो भी मुझे लगता है एक कारण है। उसमें भी आज रिबाउंड देखा हम लोगों ने, तो ये सब मिला जुला के जो हमारे पीएसयू बैंक्स हैं उनमें भी काफी खरीदारी थी, तो कुल मिला के आज करीब करीब 4-5 ऐसे कारण बने जिसकी वजह से ये मार्केट में जो इस तरह की हमने तेजी देखी।
सिद्धार्थ, बट एज अमित वॉज आस्किंग यू एंड आई विल ऑल्सो से आस्क यू द सेम थिंग दैट व्हाट वी आर सीइंग इन द मार्केट्स, दिस रैली दैट वी हैव सीन टुडे, द रिबाउंड वी हैव सीन टुडे, इज इट टू अर्ली टू से दैट दिस विल सस्टेन और डू यू इन द नियर टर्म सी द अप्स एंड डाउन्स टू कंटिन्यू?
सी अनुभा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टुमारो इन द मार्केट, बिकॉज आई थिंक मार्केट्स बाय नेचर आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। But yes, I think it is too early to say that, you know, we have seen the worst or this is the bottom, because there are too many uncertainties in the world right now. We are seeing now again there is action in Russia, Ukraine, yes. And plus US again since the victory of Donald Trump. So, you know, that impact is already being felt on several fronts. So, and what actually happens when he takes over? Plus our own domestic, our own earning outlook, the FII, the way they have, you know, exited Indian markets. So there are several still,
unknowns.
Yeah. So I think this kind of the market volatility or the kind of, you know, ups and downs, I think we should see it for until unless, you know, things settle down, yes, and things get clearer. So I think it should take some more time for all this to settle down, and only then we can definitely conclude, you know, so that we've seen the worst or the bottom.
So would you say that this is a right time, the market correction that we're seeing, so this could be a right time for or this can be seen as an entry opportunity for investors?
See, entry obviously, yes, I think even in
especially
my,
in blue chip stocks,
yeah,
if you talk
that's
about
what value buying, as we were discussing, yes, that is one of the reasons if people are seeing that good stocks have also fallen and if you're getting them at good levels. Plus I think the right strategy would be to buy in, you know, little in good, because you could still see some downside. Plus, and I think in such circumstances, the best thing is to keep some cash in your hand, mm-hmm, and keep putting money in good stocks. Plus, as we always say, you need to be invested for a long term. Yes, and opportunity is good for retail investors and even for people who have invested before the market started, you know, the coming down. I think even they need to be, don't need to get jittery. They need to, yes, have faith in their investments. And because there is no reason or there is no reason for worry as far as India's own macroeconomic fundamentals are concerned. Only one, I think one of the concerns area is in our inflation, which I think RBI is already, you know, looking at. Plus from the government side also, there are several supply side measures are being, yes, taken. So we should see even that also coming under control.
हाँ सिद्धार्थ, आज अगर देखा जाए तो अगर सेंसेक्स या निफ्टी की बात करते हैं वहां तकरीबन 2.5% की तेजी रही है, लेकिन साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तकरीबन 1% के आसपास वहां तेजी बनी है। तो जैसा कहा कि बाजार में चौतरफा कहीं ना कहीं एक खरीदारी का माहौल था, सिर्फ क्या यही वजह कि शेयर इतने अच्छे अच्छे शेयर एक बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहे थे, क्या सिर्फ यही वजह थी, या कहीं ना कहीं निवेशक का भरोसा जो है बाजार में अभी भी बरकरार है इतनी सारे ऑड्स होने के बावजूद भी, चाहे वो अगर एक अडानी के प्रति कोई विशेष खबर आती है और उसके प्रति एक पूरा हाहाकार भी मचता है और वैश्विक परिदृश्य भी बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो ऐसा भी नहीं है, तो क्या ये दर्शाता है कि हमारे जो घरेलू कारण है वो अभी भी काफी मजबूत और निवेशकों का भरोसा बरकरार है, या शेयर बाजार की जो तेजी है वो निवेशकों का भरोसे को डिगने नहीं दे रही?
नहीं, आप दोनों बातें जो आपने बात कही बहुत वाजिब बात कही। देखिए, अगर आप FIIs के जब से विड्रॉल शुरू हुआ अक्टूबर के महीने में और उन्होंने एक बड़ी मतलब तकरीबन 1,10,000 करोड़ जो है बाजार से बाहर गया, FIIs के द्वारा निकाला गया, उसके बावजूद हमने देखा उतने ही तकरीबन 1,00,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने किया। और अगर आप जो लेटेस्ट जो लास्ट डेटा आया था जो म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा, तो उसमें भी आप हम लोगों ने देखा कि कहीं भी जो हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसमें अभी भी जो उसका विश्वास है वो भारतीय बाजारों में बना हुआ है, तकरीबन 25,000 करोड़ के ऊपर चला गया जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं मार्केट्स में। तो मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और शायद ये जो FIIs अच्छा, का
जो आपने भी कहा कि जो म्यूचुअल फंड SIP का जो 25,000 करोड़ रुपया, क्या यही मजबूती दे रहा है बाजार को? और क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो उनको तो निश्चित तौर पे इतना अगर मात्रा में धन आएगा तो उसको निवेश करना ही है।
नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो पैसा आ रहा है ना, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उस रिटेल इन्वेस्टर को, उस निवेशक को ये विश्वास है कि जो भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं और जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आज हालात हैं या जिस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका एक भरोसा है
जी।
तो इसी वजह से वो, चूंकि भरोसा कायम है, इसीलिए वो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में के जरिए जो है SIP के जरिए वो पैसा बाजार में डाल रहा है।
और एक चीज, और फॉरेक्स का भी डेटा बीच में अभी कुछ आया, उसमें भी काफी बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। ये क्या सिर्फ रुपए को संभालने के लिए रिजर्व बैंक ने डॉलर बेचे हैं, क्या उसकी वजह है, या जो FIIs ने बहुत मात्रा में पैसा निकाला है, या और भी कुछ वजह, क्या और क्या इसके लिए हमको थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत है? क्योंकि फॉरेक्स का जो रिजर्व था वो बहुत मजबूती दिखाता था भरोसे को भी।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और देखिए जब हम लोग रिजर्व बैंक से बात करते थे तो वो ये बात कहते थे कि जो हमने इतना बड़ा जो फॉरेक्स रिजर्व जो कि तकरीबन 700 बिलियन डॉलर तकरीबन तक पहुंच गया था, वो हमने इसी दिन के लिए बिल्ड किया है, ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए बिल्ड किया है जब हम देखें कि सडनली FIIs का एग्जिट हो, तो ये हम देखें कि, और RBI का ये हमेशा एक जो है इस बात पे जोर रहता है कि जो रुपये में जो है ना तेजी से उतार चढ़ाव ना आए, तो वो इस बात, और इस यही वजह है जो आपने कहा। दूसरा कारण जो अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जब से निर्वाचित हुए हैं अमेरिका में, तब से डॉलर जो है लगातार मजबूत हो रहा है, ऐसा वहां पे मतलब ये लग रहा है कि ऐसी पॉलिसीज आएंगी जिससे कि उनकी इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट डॉलर को फ्यूल कर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक कारण FIIs का है, दूसरा RBI लगातार मार्केट में इंटरवीन करता है सो दैट फॉर ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ रूपी, वो ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कोई बहुत शार्प करेक्शन और शार्प फॉल और शार्प राइज ना हो रूपी में।
So, Siddharth, would you say that what we were discussing about this volatility, will it continue or is it too early to say that the rally will sustain? We have to give it another couple of months, at least till January, when the next US, the president-elect, when, you know, once he assumes office and when his policies will become more clear, so to speak. And then probably we will see, you know, the markets are going to be in a wait and watch mode till then.
Yeah, Anubha, if we take things as they stand, yes, your answer is yes. It post January, we may see some semblance returning to the market. But as things are unfolding as far as the latest friction, which is accentuated again between Russia and Ukraine. So it is very difficult to, you know, predict anything, because in this this bit of uncertainty, it is very difficult to say how things will unfold tomorrow. So yes, but what my feeling is that, yes, we will see these kind of ups and downs in the market because of the
factors which are affecting the markets the world over, not just India.
Yeah.
Right.
मैं फिर डालते हैं कुछ और खबरों पे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्थिर मुद्रास्फीति को स्थायी विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनेगा। केंद्रीय बैंकों के उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि स्थिर मुद्रास्फीति से आर्थिक अनिश्चितता को कम करने और बचत तथा निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, जबकि ऊंची मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा गरीब लोग प्रभावित होते हैं। उन्होंने बताया कि भारत के निरंतर आर्थिक विकास से रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को 4% तक सीमित रखने में मदद मिली है। बहुत संक्षेप में सिद्धार्थ, रिजर्व बैंक कहीं ना कहीं इस बारे में तो रिजर्व बैंक की तारीफ निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी कि जो मुद्रास्फीति के मामले में उसका जो आकलन है और उसके जो काम है वो बहुत सफाई से और बहुत बेहद संतुलित तरीके से उसने किया है कि विकास और मुद्रास्फीति दोनों को उसमें संतुलन कायम किया है।
नहीं, आप अमित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसके लिए तारीफ मुझे लगता है 2018 से, जब से जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास जी, जब से इन्होंने कार्यभार संभाला, मुझे लगता है तब से एक तो जो एक बीच में सरकार और RBI के बीच में कहीं दिखता था कि एक मतभेद हैं, एक तो वो बात खत्म हुई। अगर आप उसके बाद आप जो बात कह रहे हैं कि एक बैलेंस, फाइन बैलेंस बनाना इन्फ्लेशन और ग्रोथ और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना, तो उस बात पे मतलब बिल्कुल RBI अपना बिल्कुल खरा उतरा है, और उसके साथ साथ उनको सरकार से भी उतना ही सहयोग मिला है। आरबीआई तो एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो इंटरेस्ट रेट को के द्वारा आपके इन्फ्लेशन को टैकल करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे हम जब फूड सप्लाईज के जो जो कमी होती है तो वो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड जो इश्यूज होते हैं वो आरबीआई को उस समय जरूरत पड़ती है सरकार से समर्थन की। तो वो दोनों दोनों तरफ से मुझे लगता है दोनों ने, जहां तक सरकार है और आरबीआई, दोनों ने मिलकर काम किया। और इसीलिए हमने देखा है कि अभी भी हम देखते हैं कि भारत जो है दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से जो है गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भी हम, इस साल भी मुझे लगता है हम लोग तकरीबन 7% के ऊपर ही जो है आरबीआई का आंकड़ा है वो ये मान रहे हैं कि हम 7.2% हमारी विकास दर रहेगी। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है
जी। आगे बढ़ते हैं, अनदर स्टोरी रिलेटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी MMA हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग द यूज ऑफ लोकल करेंसीज, दैट इज द इंडियन रूपी एंड द मालदीवियन रूफिया, इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। द MOU वॉज साइंड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास एंड MMA गवर्नर अहमद मुनव्वर in Mumbai yesterday. The MOU encourages the use of Indian rupee and the Maldivian rufia in current account transactions, permissible capital account transactions, and any other economic or financial transactions agreed upon by both countries. Siddharth, we've seen this agreement that has been, you know, between the RBI and the Maldives Monetary Authority. This is the second such pact, you know, after UAE last year when we had a pact, RBI went into an agreement with the Central Bank of the UAE. How important are such agreements, you know, to reduce dependency on the major currencies such as the US dollar?
See, this is an, I think, effort which we have undertaken over last 2-3 years. And we have also, I think, succeeded, but yes, the success is very limited as of today. But yes, the today's development that this agreement between India and Maldives also would help establishing rupee as a, you know, currency for trade and vice versa for, you know, the country with whichever we, so we would be able to sell, settle the trade between our own local currencies. They would settle in their currency, we would settle. So this also brings down the cost of trade, plus also reduces the time. Plus, also, as you rightly said, it also reduces our dependency on dollar.
मैं फिर डालते हैं कुछ और खबरों पे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कर्नाटक के ग्रामीण निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान जारी किया है। संयुक्त अनुदान की पहली किश्त के अंतर्गत लगभग 450 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को प्रभावी, जिम्मेदार और स्वतंत्र बनाने में मदद मिलेगी।
Moving on, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has announced that the government will introduce a legal framework to ensure privacy of data. Advocating India as a prime destination for investment in technology and innovation, the minister highlighted that alongside its robust legal system, India plans to implement a new framework that will enable the secure and free flow of data among trusted partners. Speaking at the UK-India Business Council's UK-India Technology Futures Conference, Mr. Goyal emphasized the need to understand the intersection of the digital world and sustainability issues in the future. He also highlighted India's uniquely interconnected power grid, positioning it as a global leader in addressing these challenges. Mr. Goyal said that by 2030, the country will have a 1,000-gigawatt grid connected through the length and breadth of the country. He added that India and UK can collaborate on technology in the fields of artificial intelligence, education, telemedicine, climate modeling, precision agriculture, among others.
वर्णा फिर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8%, जापान का निकेई 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.2% की बढ़त से बंद हुआ। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 3% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग के हैंगसेंग में भी लगभग 2% का नुकसान रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती कारोबार में मिलाजुला दौर रहा। कारोबार के दौरान फ्रांस और लंदन के शेयर बाजार 0.6% तक की बढ़त के दायरे में नजर आए, जबकि जर्मनी का शेयर बाजार मामूली गिरावट में नजर आया।
Moving on to US markets, US stocks edged higher yesterday, led by gains in sectors including utilities, financials, consumer staples and industrials. Meanwhile, the country's weekly report of jobless claims showed an unexpected fall, reflecting rebound in job growth during November of current fiscal year. The Dow Jones Industrial Average jumped over 1%, S&P 500 added over 0.5%, and Nasdaq Composite ended the session with a marginal gain of 0.03%. Siddharth, a very quick comment here. We've already seen 75 basis points cut by the US Fed in their interest rate. They've already begin with their rate cut cycle. Do you expect this to continue in the coming FOMC meeting in December?
I think as they फेड चेयरमैन सेड आफ्टर द लास्ट मीटिंग जस्ट दैट दे वोंट बी इम्पैक्टेड बाय व्हाट नो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रंप व्हाट हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज बट आई थिंक समहाउ इट वुड ऑल्सो इम्पैक्ट बिकॉज एज वी हैव सीन द पोस्ट विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वी आर सीइंग दैट नो दिस हिज अनाउंसमेंट्स हिज पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन लॉज एंड हायर टैरिफ्स and plus so all this is also showing some impact on their own and is giving that euphoria that's why we're seeing the dollar index going up so I think all that would and plus they are also talking about he's talking about pushing the local economy cutting taxes which means higher deficit so I think we'll have to wait and watch how in future, Fed would act.
And I think what you're saying also reflects in the, you know, what U.S. Fed Chairman Jerome Powell recently said. He also is saying, you know, that there is no need to rush through it. We will take a call. So that was the basically the gist of what he said, that they may or may not go in for another rate cut.
Yes. Plus, I think what, as you said rightly, U.S. is also giving us still that conflicting data we are getting from U.S. So 1 month you get something plus another month you have just the opposite. So I think that also needs to settle down. And I think the most important thing is the new administration settling down.
कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 6 राज्यों पर आधारित जॉब सेट योर डोरस्टेप नामक रिपोर्ट जारी की. इस अवसर पर श्री प्रधान ने सुझाव दिया कि विश्व बैंक की टीम संपूर्ण भारत के लिए इस तरह की रिपोर्ट जारी करने पर काम करे. श्री प्रधान ने कहा कि इस तरह की गहन रिपोर्ट से प्रगतिशील नीतियां बनाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव हुआ है जिसके कारण कार्यबल के कौशल को सुदृढ़ और मजबूत बनाने की जरूरत है.
At the 55th International Film Festival of India, IFFI, in Goa, one of the most significant and eagerly awaited events is the Film Bazaar, organized by the National Film Development Corporation of India, NFDC. This event draws a substantial number of film-related personalities and serves as a vibrant marketplace for filmmakers, producers, distributors and other stakeholders in the global film industry to connect, network and collaborate. Since its inception in 2007, the Film Bazaar has been instrumental in fostering co-productions, distribution and showcasing independent and regional Indian cinema on an international stage. While speaking to Akashvani, IFFI's special invitee George Tiller shared that his experience at the Film Bazaar has been quite positive, providing him opportunities to build new connections.
I mean, I'm presenting a film in the festival. I had a great reception of the film so far. I'm making a lot of contacts here at the bazaar. And I also, which I didn't know, make a lot of new connections to Indian cinema. I will see. For now, there is great interest on both sides. I need to see also what we can do because I'm approached by many Indian filmmakers and producers. But it's actually not so easy, of course, to co-produce with India, in Austria especially. But I'm curious to explore what is possible.
Film personalities from various segments are also present at the Film Bazaar. Speaking to Akashvani, film and OTT actress Rashmi Agrekar explained how a platform like the Film Bazaar helps her as an artist in meeting directors and producers.
A place like Film Bazaar is just perfect, and because I'm also here with my film, it's called Rao Saheb, and we are in the international competition. So I'm here not just with a film, but also to talk to people, like-minded people, discover more directors, producers, writers, co-actors, and just like hang out, discuss the craft and see where it goes.
Let's move on to commodities. Oil prices slipped today. Brent crude was trading over 0.6% down at $73.73 per barrel, while the WTI crude had lost 0.7% to trade at $69.61 per barrel when reports last came in.
सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया. अंतिम समाचार मिलने तक 24 कैरेट का सोना लगभग 1% बढ़कर 77,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1.1% की बढ़ोतरी से 91,390 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आए अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर के वायदा कारोबार में सोने का मूल्य लगभग 1% की बढ़त से 77,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी 1% बढ़कर 90,880 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. सिद्धार्थ, सोने चांदी ने बहुत लोगों को शायद चौंकाया भी है और आश्चर्यचकित भी किया है, तो अब जो 80,000 के भाव, और क्या वो तात्कालिक था या इस पे अमेरिका का असर भी यहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि डॉलर मजबूत होता नजर आया है, क्योंकि तब हम जब बात करते थे 103 डॉलर इंडेक्स 103-104 पे था, अब 107 से भी ऊपर है, तो क्या सोने का भाव तकरीबन अब आप मान सकते हैं कि वैवाहिक अवसरों के भारत में, क्योंकि व्यावसायिक अवसर बहुत बड़े खरीदार के रूप में उभरते हैं सोने और चांदी के लिए, तो क्या ये 77-78 हजार रुपए का जो स्तर है सोने का घरेलू बाजारों में, ये उपयुक्त है? अब इसमें बहुत बड़ी गिरावट या उछाल नजर नहीं आता? और वैश्विक अगर स्तर पर देखें तो सोना $2500 से भी ऊपर है, वहां पर क्या स्थिति बनती है?
नहीं देखिए, हम एक तो एक कारण आपने हमारा डोमेस्टिक बोला
जी
और डॉलर को आपने उससे जोड़ा, लेकिन आप देखिए कि पिछले मतलब मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए तो उसके बाद सडनली हमने देखा कि कहीं ना कहीं भाव गिरे भी, सोना काफ़ी तेजी से नीचे आया, लेकिन और ऐसा लग भी रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन और वो भी ऐसे टाइम पर जब हमारे यहाँ अब शादियों का जो है मौसम चल रहा है और तकरीबन मुझे लगता है एक महीने जो है
16 दिसंबर तक
तो कहने का मेरा मतलब ये कि उसके बावजूद गिरे भाव जरूर, लेकिन फिर वापस जो है स्ट्रेंथन हो रहा है सोना। और दूसरा एक बड़ा कारण अगर आप मतलब सोने का इतिहास देखेंगे तो सोना ऊपर ही ऊपर जा, ठीक है शॉर्ट टर्म में आपको दिखा होगा कभी गिरा बट अदरवाइज। और बड़ा कारण क्या है, जब आज के सेंट्रल बैंक्स बहुत बड़े
मात्रा में
जो है गोल्ड खरीद रहे हैं, चाहे वो भारत का सेंट्रल बैंक हो या दुनिया का सेंट्रल बैंक, तो वो जो उसका एक सेफ इंस्ट्रूमेंट जो है ना, सेफ्टी जो एज अ मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वो जो है वो बरकरार है। तो मुझे लगता है एक तो ये कहना कि किस लेवल पे रहेगा बड़ा मुश्किल है
जी।
लेकिन हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ये इस लेवल पे रुक जाएगा या यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। मुझे लगता है ये सब कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी सेंट्रल बैंक्स आर आल्सो बिग बायर्स डिस्पाइट ऑल दैट डोमेस्टिक रीजंस वी हैव मैरिज सीजन ये, और इंडिया में अदरवाइज भी आप देखेंगे गोल्ड की खपत है, सेफ इंस्ट्रूमेंट है,
और ललक तो भारतीय उपभोक्ताओं में सोने के प्रति बनी हुई है ही है। अगर नाइमेक्स की बात करें तो तकरीबन $2700 है अब आज की डेट में भी, अभी भी बना हुआ, तो $2700 पे बना रहना सोने की मजबूती में ये मतलब स्वाभाविक सी बात है। क्या हम इसमें माने, अगर चांदी की बात करें तो चांदी 1 लाख के स्तर को छूने के बाद अगर 91,000 के आसपास बनी हुई है, तो
आप 2700 कह रहे हैं, मैंने तो एक्सपर्ट्स को सुना है 3300 तक की इस जो है ये भाव जाएंगे या जा सकते हैं, और कुछ दिन पहले तक ये थोड़ा सा अभी हल्का सा डिस्पोंडेंसी आई है गोल्ड को लेके, नहीं तो लोग बहुत बुलिश थे गोल्ड पे, और आप मतलब इस साल हमने देखा ही था दिवाली के पहले
जी।
तो जो लेवल हाईएस्ट लेवल जो उस दिन हम लोग 80,000 या कुछ
पास
गया था गोल्ड, तो मुझे अभी ऐसा कोई गोल्ड के तरफ आकर्षण कम हो जाए, और ऐसे में जब हमारी बाजार में भी उथल पुथल हो रहा हो तो कहीं ना कहीं वो भी निवेशकों को थोड़ा गोल्ड के तरफ भेजेगा, तो मुझे दिखता नहीं है कि कोई ये जो चमक है इसकी फीकी पड़ने वाली है।
अच्छा, सोने और चांदी में ना एक होड़ सी लगी थी बाजार में, दो कहते थे कि पहले कौन 1 लाख के स्तर को छुएगा, चांदी ने वो स्तर को पार कर लिया, और हालांकि उसके बाद ठीक है तकरीबन 10% की गिरावट भी वहां से आ चुकी है, तो चांदी का स्तर अभी क्योंकि इंडस्ट्रियल बाइंग बहुत है और इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत है, तो उस दिशा में चांदी में कैसा नजर आता है?
नहीं देखिए, चांदी आपने एक तो एक और आप चीज देखिए ना, इस बार दिवाली पे एक नई चीज देखने को मिला
जी।
क्योंकि जब गोल्ड बहुत महंगा हो गया है तो अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है, तो या तो आप बहुत छोटी मात्रा में गोल्ड खरीद लें, तो हमने देखा निवेशक इस बार जो है चांदी की खरीद गोल्ड से ज्यादा हुई तो एक वो भी, तो ये भी हो सकता है आगे चल के कि एक जो आम लोगों में भी चांदी के प्रति भी जो है एक रुझान जो बढ़ रहा है और वो और बढ़े, बिकॉज अफोर्डेबल है, आप खरीद सकते हैं। अगर गोल्ड की जो प्राइजेस जिस लेवल पे हैं तो उससे उसका जो मात्रा जो आप खरीद पा रहे हैं, तो शायद लोग इसलिए इस बार हमने देखा दिवाली पे बहुत बड़ी मात्रा में, इनफैक्ट वी सरपास्ड गोल्ड।
And let's take one more story. The government has selected 28 projects under the Tomato Grand Challenge to address critical issues across the tomato value chain. Addressing a press conference in New Delhi, Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare informed that the Tomato Grand Challenge was started last year and 1,376 ideas were received. She said out of them, 28 ideas have been selected and received fund and mentorship.
सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा सरल शब्दों में समझाने के लिए धन्यवाद।
And,
आप दोनों को भी धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस सर्ज ओवर 2%, सेंसेक्स जंप्स 1,961 पॉइंट्स, निफ्टी एंड्स अबव 23,900, मार्केट्स इन एशिया एंड यूरोप डिस्प्ले मिक्स्ड ट्रेंड, एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस स्लिप, ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $73.73, एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फॉर नाउ, गुड बाय।